السلام علیکم. آج جمعرات ہے، ستمبر کی 29 تاریخ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. آغاز کرتے ہیں یہاں واشنگٹن سے، جہاں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دورے پر ہیں. اس موقع پر وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے ان کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا اور ان سے پاکستان اور خطے سے منسلک سوالات کیے. بلاول بھٹو نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں افغانستان کے حکمرانوں کو الگ تھلگ کرنے سے انتباہ کیا تھا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ افغان طالبان سے رابطہ کاری کے حق میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں خواتین اور دیگر گروپس کو حقوق ملیں تو ہمیں طالبان کو انگیج کرنا ہوگا اور ان کے منجمد فنڈز جاری کرنا ہوں گے، کیونکہ وہ عوام افغان عوام کے فنڈز ہیں. پاکستان میں سیلاب کی مد میں دی جانے والی امداد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آج دنیا پینڈیمک کی وجہ سے اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہے، تو ہمیں اپنی توقعات کو اس کے مطابق رکھنا ہے. لیکن اس وقت تک ہمیں جو سپورٹ ملی ہے امریکہ کی طرف سے اور اپنی بین الاقوامی ساتھیوں سے، میں اس سے بہت مطمئن ہوں. انہوں نے کہا کہ ہر ایک پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ تفصیلی انٹرویو آج نشر ہوگا ویو 360 میں، آج نیوز پر 7:30 بجے، اور وائس آف امریکہ کے اردو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تقریباً رات 8 بجے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزائیں قلعدم قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا ہے. احتساب عدالت نے جولائی سن 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد مختصر فیصلہ سنایا. عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں ختم کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کرنے کا حکم جاری کر دیا. امریکہ کی جانب سے پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے $45 کروڑ کے پیکج کی منظوری کے حوالے سے کیا بھارت کسی تشویش میں مبتلا ہے اور کیا وہ پاک امریکہ رشتوں میں بہتری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا؟ یہ سوال بھارتی وزیر خارجہ S.J. Shankar کے ایک حالیہ بیان کے تناظر میں پیدا ہو رہا ہے، جو انہوں نے اتوار کو واشنگٹن میں بھارتی امریکیوں کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے دیا. امریکہ کا کہنا تھا کہ اس امدادی پیکج سے اسلام آباد کو دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی، لیکن جے شنکر نے کہا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ F-16 جنگی طیاروں کا استعمال کہاں اور کس کے خلاف کیا جاتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جے شنکر کی تشویش کو مسترد کر دیا. تاہم نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کے مطابق پاک امریکہ رشتوں میں بہتری بھارت کے لیے تشویش کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن بعض تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کی بنیاد پر جس ملک سے چاہے اپنے رشتے قائم کرے. افغانستان میں طالبان نے خواتین کی ایک ریلی کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی. یہ خواتین ایران میں مظاہروں کی حمایت کر رہی تھیں. عین شاہدین کے مطابق تقریباً 25 افغان خواتین نے کابل کے ایرانی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا، جس کے بعد طالبان فورسز نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں منتشر کر دیا. ایران کی اخلاقی پولیس کی حراست میں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ایرانی مظاہروں کی حمایت میں افغانستان میں یہ پہلا احتجاج تھا. افغانستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستانی پولیس نے 150 अफगान तारिकीन वतन को रिहा करके वतन वापस भेज दिया है। जुमेरात को अदालत की जानिब से ये अफगान महाजरीन वापस भेजने के फैसले के बाद पुलिस की तहवील में थे। म्यांमार में फौज के जेर इख्तदार एक अदालत ने बरतरफ रहनुमा आंग सान सूची और उनके ऑस्ट्रेलवी माहिर इक्तसादियात शान टर्नल को मुल्क के खुफिया कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुमेरात को 3 साल कैद की सजा सुनाई। सूची और टर्नल के खिलाफ इल्जाम की सही नौयत को मंजर आम पर नहीं लाया गया। ऑस्ट्रेलियन वजीर खारजा पेनी वोंग ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया अदालत के फैसले को मुस्तरद करता है और टर्नल की फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। टर्नल ने सूची हुकूमत के मुशीर के तौर पर काम किया और फरवरी सन 2021 की बगावत के चंद दिन बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और अब एक ऐलान। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट्स नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं या हमारी स्मार्टफोन एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तियाब हैं। ऐलान खत्म हुआ और बाकी खबरें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भूख और गजाइत पर व्हाइट हाउस की 50 साल में होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस का आगाज करते हुए अमरीका में सन 2030 तक भूख के खात्मे और खुराक से मुंसलिक बीमारियों में कमी के लिए मुतअद्दिद अहदाफ तय किए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने इस बारे में गुफ्तगू की कि दुनिया भर में खुराक की सबसे ज्यादा बैन अल-अक़वामी मुआवनत फराहम करने वाला मुल्क अपने लोगों को किस तरह बेहतर तौर पर खुराक फराहम कर सकता है। बाइडन ने वफाकी हुकूमत के मुतअद्दिद इक़दामात और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए $8 अरब के वादों का ऐलान किया। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के 4 इलाकों को बाज़ाब्ता तौर पर रूस में शामिल करने के लिए जुमे को एक तकरीब मुनक़िद करेगा। यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने नई पाबंदियों की सूरत में इंतकामी कार्रवाई का वादा करते हुए इस अमल को नाजायज करार दिया है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोफ ने जुमेरात को सहाफियों को बताया कि तकरीब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इन 4 खित्तों के रूसी मुकर्रर करदा सरबराहान भी शामिल होंगे। रूस ने इन इलाकों में रेफरेंडम का इनेकाद किया था जो इस हफ्ते के शुरू में खत्म हुए थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जान पियर ने बुध को सहाफियों को बताया कि रूस जो भी दावा करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इलाके यूक्रेन का ही हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में हम अपने इत्तेहादियों और शराकत दारों के साथ मिलकर रूस और रूस के अंदर और बाहर उन अफराद और इदारों पर इजाफी पाबंदियां आयद करेंगे जो इस कार्रवाई में तआवुन फराहम करते हैं। जर्मन चांसलर ओलफ शुल्स ने जुमेरात को ट्वीट किया कि उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यकीन दिलाया है कि जर्मनी कभी भी इन नतायज को तस्लीम नहीं करेगा। शुल्स ने कहा कि यूक्रेन के गैरकानूनी तौर पर कब्जे वाले इलाकों में पुतिन की तरफ से कराए गए झूठे रेफरेंडम बेसूद हैं। यूरोपीय यूनियन ने बुध के रोज मॉस्को को इन जाली रेफरेंडम्स की बिना पर तनकीद का निशाना बनाते हुए रूसी तिजारत पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। अमरीकी महकमे खारजा ने बुध के रोज इस बारे में तशवीश का इजहार किया है कि मॉस्को रूस के साथ दोहरी शहरियत के हामिल अमरीकियों को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में लड़ाई के लिए भर्ती कर सकता है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि अमरीकी शहरियों को रूस का सफर नहीं करना चाहिए और जो कोई भी वहां है उसे फौरी तौर पर रूस से रवाना हो जाना चाहिए जबकि महदूद कमर्शल सतह के सफर जारी रहेंगे। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने दोनों कोरियाओं को अलग करने वाले गैर फौजी जोन के दौरे के दौरान शिमाली कोरिया की सफाकाना आमरियत और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले हथियारों के प्रोग्राम की मजम्मत की है। हैरिस का DMZ दौरा एशिया के 4 रोजा दौरे का आखिरी पड़ाव था। हैरिस ने साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे की मंगल के रोज सरकारी तदफीन में अमरीकी वफद की क्यादत की थी। ईरान के सरहद पार दागे जाने वाले मिसाइल और ड्रोन फजाई हमलों ने बुध के रोज शिमाली इराक में हिजब इख्तलाफ के ईरानी कुर्द ग्रुप्स को हदफ बनाया और कम अज कम 13 अफराद को हलाक और 58 को जख्मी कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अमरीका ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की है। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने एक बयान में हमले को इराक के इख्तदार आला और उसके लोगों पर एक जारहाना कार्रवाई करार देते हुए हमले की मजम्मत की। सलिवन ने मजीद कहा कि अमरीका का इरादा है कि वह पाबंदियों और दूसरे तरीकों से ईरान पर दबाव जारी रखें। आर्मीनिया और आजरबाईजान ने बुध के रोज एक दूसरे पर फायरबंदी के उस माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया जो इस माह दो रोजा जंग के बाद तय पाया था। 5 दिन में यह दूसरी खिलाफ वर्जी है। आजरबाईजान की वजारत दिफा ने कहा कि आर्मीनिया की यूनिट्स ने कल बाजार इलाके में आजरबाईजान की चौकियों पर फायरिंग शुरू की और अमले के एक रुकन को जख्मी कर दिया और आजरबाईजान की फोर्सेस ने जवाबी इकदाम किए। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने एक ट्विटर पर मुतजाद बयान दिया जिसमें कहा गया कि आजरबाईजान की फोर्सेस ने मोर्टर और बड़े हथियार इस्तेमाल करते हुए मुश्तरका सरहद के करीब आर्मीनिया की चौकियों पर फायरिंग की और यह कि आर्मीनिया ने जवाबी कार्रवाई की। 2 हफ्ते कबल सरहदी झड़पों के बाद जिनमें लगभग 200 फौजी हलाक हो गए थे, दोनों फरीक रूस की सालिसी में कराई गई एक फायरबंदी पर मुत्तफिक हो गए थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके बेइंतहा ममनून हैं। आप अपनी इन मोहब्बतों को, इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।